हरे कृष्णा। आप सब कृष्ण भावना भावित भक्तों का रविवार के सायंकाल के सत्संग में स्वागत है। इस्कान के भक्तों के द्वारा हर रविवार को भगवान श्री कृष्ण हरे कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा वाणी भगवद गीता हमारे को अपने कर्तव्य को ठीक तरह से करने के लिए सिखाई जाती है। भगवद गीता सिखाने का उद्देश्य है कि हम अपना धर्म ठीक तरह से निभाएं, हम अपना कर्म ठीक तरह से करें, नहीं तो बगैर शिक्षा के कोई भी काम संसार में ठीक तरह से नहीं होता। आपका क्या विचार होता है, आपके बच्चों को स्कूल में भेजना चाहिए, कुछ शिक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं, क्यों, क्या जरूरत है? हाँ, कोई जरूरत है क्या? अपने प्यारे बच्चों को रोज सुबह सवा सवेल नींद से उठा के वो गधे की तरह ऊपर बोरी बिस्तर लाद कर, हाँ, 2-4 किलो पीठ के ऊपर और ताजा पकाया हुआ भोजन डब्बे में बंद करके 3 घंटे बाद ठंडा खाने के लिए घर से भेजने की क्या जरूरत है? हाँ, क्यों ऐसे करते हैं? कुछ सीख के आएगा तो जिंदगी में कम से कम अपने 2 टाइम की रोटी कमा सकेगा, ये ठीक है कि ना? ये कोई और उद्देश्य है? इतनी बड़ी परेशानी उठाते हैं इसके लिए या वही कोई कार्य? तो ऐसे ही बड़ों को भी शिक्षा दी जाती है भगवद गीता की कि ये संसार के अंदर हमारी यात्रा केवल इतनी ही नहीं है जितनी छोटी नजर आती है। ये आत्मा नित्य है, ये तो छोटा सा एक ड्रामे का स्टेज है जिसके ऊपर हम एक ड्रामा कर रहे हैं 60-70 साल के लिए। किसी के भाई बने हैं, किसी के बेटे बने हैं, किसी के पति बने हैं, लेकिन ड्रामे से उतर के फिर वापस घर जाना है। अभी देखा है कि ड्रामा जो करते हैं वो स्टेज पे सारी उम्र बैठते हैं, कभी घर जाते हैं? हाँ जी, ड्रामा वाला ड्रामा करेगा, घर जाएगा कि नहीं जाएगा? स्टेज के ऊपर सारी उम्र तो नहीं गुजार सकते ना। तो ये जो 80-90 साल की उम्र है ये एक ड्रामा है जिसमें हमने स्टेज के ऊपर सब अपने पार्ट अच्छी तरह से निभाने हैं। बेटा, भाई, पुत्र, पत्नी, जो भी हमारा जो ड्रामा करना है वो अच्छी तरह से करना है, लेकिन वापस घर जाना है ये नहीं भूलना है। तो वापस घर कैसे जाएंगे ये शिक्षा भगवद गीता से हमको मिलनी चाहिए। ये बात समझ में आई? ये ड्रामे का स्टेज सब कुछ नहीं है, ये जीवन के 80-90 साल जो हम समझते हैं सब कुछ है ये मूर्खता है। आप कहेंगे ऐसे कैसे माना जाता है? छोटा बच्चा जन्म लेता है तो जब वो दूध पीता है उसको कोई सिखाता है? स्कूल भेजना पड़ता है दूध पीने सीखने के लिए? आंखें भी बंद होती है, स्तन मुंह में तो ऐसे करने पीता करता है कि नहीं करता है? कहां से सीख के आया? कई बार पी चुका है, उसको ये दूध पीना आता है पहले से। रोना किसी ने सिखाया बच्चे को? हाँ, इतना रो के गया ऐसे उसको आते ही रोना याद आता है, काम ही ये करके गया, और क्या करके गया? ये दुनिया में रोना ही रोना है। कोई सिखाता है उसको कि बेटा कैसे रोना है? शुरुआती जीवन की रोने से करता है, इतनी अच्छी दुनिया होती तो आते हुए रोता नहीं। क्यों भाई? ये दुनिया इतनी अच्छी होती तो आते हुए बच्चा रोता नहीं, रोता हुआ आता है कि नहीं आता है? बच्चा रोता है और हम सब खुश हो जाते हैं, हाँ हाँ अच्छा है अच्छा है। हम क्यों खुश? बोला हम भी ऐसे रोते आए थे, हमारे थोड़ा बड़ा होगा तो इसको भी पता लग जाएगा, अब इसको रोने दीजिए। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये शिक्षा रोने की खाने की ये कहीं से लेनी नहीं पड़ती है, अपने आप हमको आती है। ये तो पशुओं में पड़ी है, वो भी ऐसे कर रहे हैं, उनको कहो कौन सी स्कूल में जाते हैं, क्यों भाई सच है कि नहीं? ये तो वो भी कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, पशु सो रहे हैं, देखा है कि नहीं? तो ये शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है। शिक्षा तो इस बात की लेनी है कि स्टेज से घर कैसे जाना है। बच्चे घर का रास्ता वापस स्कूल से नहीं जानते, इसलिए बस रखी है, ड्राइवर रखा है कि वापस लेके आए। तो ये भगवत गीता, ये साधु संत, ये असल में भगवान ने आपके लिए बस रखी है वापस घर ले जाने के लिए। अगर आप चढ़ोगे तो जाओगे, इसलिए भागवत में इसको कहा है नौका। कलयुग के भयानक सागर को पार करने के लिए भगवत गीता और भागवत क्या है? नौका है। ऐसे इसका श्रीमद् भागवत में ऐसा वर्णन है। लेकिन नौका तो है, लेकिन कर्णधार भी चाहिए ना, कोई नौका चलाने वाला भी चाहिए ना, तब हम वापस अपने घर जा सकेंगे। अब एक बात अभी समझ लीजिए कि ये 80-90 साल जिंदगी का सब कुछ नहीं है, इससे पहले भी हम थे, इसलिए हमको बहुत सी शिक्षाएं पहले से मालूम है, और ये शरीर समाप्त हो जाएगा तब भी हमारा अस्तित्व रहेगा। उस आत्मा के आगे के सफर को सही दिशा देने के लिए भगवद गीता की शिक्षा है। लेकिन इस शरीर को सही उपयोग करने के लिए भी भगवद गीता की शिक्षा है। आत्मा को सही दिशा देने के लिए और शरीर का सही उपयोग करने के लिए भगवद गीता की शिक्षा है, दोनों के लिए। शरीर को ठीक तरह कैसे सेवा में लगाया जाए। अच्छा, भागवत में शरीर को भी नौका कहा है, आत्मा इसमें यात्री है, और ये शास्त्र भगवत गीता भागवत आदि ये अच्छी सी हवा है जो नौका को जल्दी अपने किनारे की तरफ ले जाने में सहयोग करेगा। और गुरु साधु उस नौका को चलाने वाला है जो उसको मंजिल के ऊपर ले जाएगा। तो भगवद गीता की शिक्षा हमारे लिए जरूरी है कि नहीं है? हाँ जी है। तो ये जो अध्याय जिसकी आप अध्ययन कर रहे हैं, तीसरा अध्याय, ये शरीर को कैसे सही उपयोग में लाया जाए उसके लिए है। इसका नाम है कर्म योग, और कर्म शरीर से होता है। कर्म शरीर मन और इंद्रियों से होता है, आत्मा आखिर अकर्ता है। तो पहले शिक्षा दी जाती है शरीर को कैसे सही उपयोग में लाया जाए। कर्म योग, कर्म किससे होगा? शरीर से। कुछ करेंगे तो शरीर से करेंगे, सोचेंगे मन से, करेंगे शरीर से, इंद्रियों से। तो कर्म योग तो शरीर और इंद्रियों से होगा, मन से होगा। तो ये कर्म योग का अध्याय का नाम है कर्म योग। अध्याय का नाम कर्म नहीं है, कर्म योग है, दोनों में अंतर है। आपको सामान्य लोग मिलेंगे रोड पे, हम भी कर्म कर रहे हैं, बोला हाँ आप कर्म कर रहे हैं, कर्म योग नहीं कर रहे हैं। भगवत गीता कर्म योग की बात कर रही है, कर्म की बात नहीं कर रही। तो दोनों में अंतर क्या है? कर्म करना मतलब अपने लिए करना, कर्म योग करना मतलब भगवान के लिए करना। दोनों में योग शब्द का अर्थ आ जाए, योग का अर्थ होता है वैसे उपाय जिसके द्वारा अपने आप को भगवान के साथ जोड़ा जा सके, भगवान से संबंध स्थापित किया जा सके। वैसे योग यज्ञ दोनों का अर्थ विष्णु होता है। तो कर्म अपने लिए करते हैं, और कर्म योग भगवान के लिए कर्म करने को कहते हैं। तो दोनों में अंतर हो गया कि नहीं हो गया? कर्म योग दो प्रकार का होता है, एक सकाम कर्म योग होता है, एक निष्काम कर्म योग होता है। सकामना, इच्छा के साथ काम करना, करेंगे भगवान आपके लिए काम, लेकिन उसका फल कुछ हम भी भोगेंगे, कुछ आपको देंगे, ये हुआ सकाम कर्म योग। निष्काम कर्म योग का अर्थ है भगवान जो भी कार्य हमारा है हम करेंगे, लेकिन इसका फल सारा आपको अर्पण कर देंगे, ये हुआ निष्काम कर्म योग। भगवत गीता निष्काम कर्म योग की शिक्षा देती है, निष्काम कर्म योग की, क्योंकि इसमें भगवान आ रहा है। इससे थोड़ा नीचे है कर्म कांड, जिसमें देवताओं के लिए यज्ञ आदि किया जाता है, वो कर्म कांड है, कर्म योग नहीं है। कर्म कांड का अर्थ है देवताओं की पूजा करनी ताकि इस संसार में हमको सुख मिले अथवा स्वर्ग मिले। संसार का सुख अथवा स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए जो भी देवी देवता की पूजा की जाती है उसको कहते हैं कर्म कांड। तो कर्म हो गया, कर्म कांड हो गया, कर्म योग हो गया, अब तीन चीजें हो गई ना। और कर्म योग में भी सकाम कामना के साथ कर्म हो गया और बिना कामना के कर्म हो गया। जो कर्म करेगा उसको उसका फल भोगना पड़ेगा। अच्छा कर्म करेगा अच्छा फल भोगना पड़ेगा, खराब कर्म करेगा खराब फल भोगना पड़ेगा, ये बात तो सीधी है। और कर्म कांड में काम करेगा तो प्रायः अच्छा ही काम करेगा तो इस संसार में सुख मिल जाएगा और मरने के बाद स्वर्ग भी मिल जाएगा अथवा वापस आएगा तो अच्छे से स्थान पे वापस आएगा। भाई मैंने स्कूल बना दी, अच्छा सा सेवा का काम किया, दोबारा आएगा तो शिक्षा मंत्री बन जाएगा, अच्छा है ना। स्कूल बनाई थी तो उसको फल मिलेगा ना, शिक्षा मंत्री बन जाएगा, लेकिन वापस आएगा तो सही ना। तो कर्म कांड वाले को वापस तो आना पड़ता है लेकिन उसका फल अच्छा है। कर्म वाले का अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे का बुरा फल। कर्म योग वाला वापस नहीं आएगा क्योंकि भगवान से जुड़ के काम किया है, वो इनसे ऊपर है, भगवान के लिए काम किया है। और भगवान जब ये कर्म योग की शिक्षा अर्जुन को दे रहे हैं तो पहले तो ये कहते हैं कि बगैर कुछ किए इस दुनिया में कोई रह ही नहीं सकता, कुछ करना ही पड़ेगा। इस दुनिया में निष्क्रिय कोई नहीं हो सकता, ये सच है कि नहीं? कोई निष्क्रिय नहीं रह सकता, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा इस शरीर को चलाने के लिए, ये बात तो ठीक है। अब भगवान कहते हैं जब आप निष्क्रिय रह नहीं सकते हो तो अगर आप यज्ञ अर्थ कर्मणों, अगर यज्ञ के लिए विष्णु के लिए कर्म करोगे तो कर्म के बंधन से छूट जाओगे, और अपने लिए कर्म करोगे तो कर्म के बंधन में फंस जाओगे। तो कुछ करना ही पड़ेगा, तो अपने लिए करें कि भगवान के लिए करें, ये प्रश्न है यहां। अब आप बताइए ज्यादा लोग अपने लिए करते हैं कि भगवान के लिए करते हैं, साफ है कि नहीं? तो इसका मतलब कर्म योग कोई नहीं कर रहा है, प्रायः सब लोग कर्म कर रहे हैं। और गलत एक धारणा आ गई है, गीता कर्म की बात कर रही है, गीता कर्म को नहीं की नहीं कर्म योग की बात करती है। भगवान कहता है काम मेरे लिए करो, क्यों ऐसे कहता है? आप अपने बेटे को क्या बोलोगे, काम मेरे लिए करो, ऐसे कहोगे या कहोगे दुनिया के लिए काम करो, क्या बोलोगे बोलो? हाँ क्या बोलोगे भाई? कारखाना मेरा, बेटा मेरा, और मैं उसको क्या कहूंगा बोलो? क्या कहना चाहिए मुझे? हाँ बेटा, क्या क्या बोलना चाहिए उसको? बोलो बेटा, मेरा कारखाना है, तू मेरा बेटा है, मेरे लिए काम कर, तुम सुखी रहेगा। बेटा कहता नहीं, तुम जाए तेरा कारखाना जाने, मैं अपने लिए काम करूंगा। वो बेटा अच्छा के समझदार के बुद्धिमान के मूर्ख? हाँ, आपका क्या विचार, कैसा लगेगा? वो बच्चा कैसा है? मूर्ख है ना। ये दुनिया किसकी? भगवान की। और हम किसके? और भगवान कहते मेरे लिए काम करो, गलत कह रहा है क्या? हाँ, जिसकी दुनिया, जो दुनिया का और हमारा दोनों का मालिक, वो कहता है मेरे लिए काम कर, तो आप कहते नहीं हम अपने लिए काम करेंगे, तो मूर्ख हुए कि नहीं हुए? हाँ भाई, आप कह रहे हैं खुद के दुनिया भगवान की है, हम भी भगवान के काम, लेकिन काम भगवान के लिए नहीं करेंगे। तो कोई गलत शिक्षा नहीं है भगवद गीता की, बहुत अच्छी शिक्षा है, उत्तम शिक्षा है। और आप बताओ कि बेटा अगर बाप के लिए काम करेगा, बाप के कारखाने में, तो सुखी रहेगा कि नहीं रहेगा? उसको कोई चिंता है क्या? उसको तनख्वाह की जरूरत है? उसको तनख्वाह की जरूरत है? नहीं है ना, क्यों? सब कुछ है तो बाप का है तो मेरे लिए है। तो जो निष्काम कर्म योगी हैं वो ऐसे हैं जैसा बेटा बाप के लिए काम कर रहा है, उसको तनख्वाह की क्या जरूरत है? और जो अपने लिए काम करते हैं वो तनख्वाह मांगते हैं। अब आपसे मैं पूछूं, तनख्वाह वाली बाई आपके घर में काम करती है और वो आपका एक प्लेट तोड़ती है, आप उसको क्या कहोगे? तेरी तनख्वाह से काट लेंगे, अंधी थी क्या, देखती नहीं है, प्लेट तोड़ती है, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? और आपके बेटे से टूट जाए तो कोई बात नहीं, बेटा तेरे को लगा तो नहीं? हाँ, दोनों में अंतर कितना है देखने, समझ में आ रहा है? वो पैसा लेती है तो उसको गालियां देती है, और जो मुफ्त में बैठा है, नहीं फिर तुम्हारे को तो नहीं लगा? कोई बात नहीं, प्लेट का क्या? हाँ, क्या दूसरा आ जाएगा? बस इतना अंतर है, निष्काम कर्म योग करने वाला भगवान का अपना होता है, उसी के घर में उसी के लिए काम करता है और उसी को सब कुछ पर्याप्त मात्रा में मिलता है, उसके साथ उसका उसको तनख्वाह की जरूरत नहीं है। तो ये अंतर है। अब ये अंतर समझ में आया? भगवान के लिए काम किसके के लिए करो, बोले यज्ञ अर्थ। और फिर कह दिया, अरे भाई मैंने सृष्टि पैदा की तो यज्ञ को भी प्राप्त पैदा किया और आदेश दे दिया कि यज्ञ करो और सुखी रहो। भगवान ने कहा यज्ञ करो और सुखी रहो, ये भगवद गीता के तीसरे अध्याय का श्लोक है। तो अभी आप लोग यज्ञ कर रहे हो? हाँ, यज्ञ को क्या समझते हैं सामान्य लोग? यज्ञ का क्या समझते हैं? यज्ञ किसको बोलते हैं? हवन का कुंड होएगा, अग्नि होएगी, घी होगा, पंडित जी आएगा, स्वाहा करेगा, उसको यज्ञ बोलते हैं। और फिर कोई कहे कि आए तो भगवत गीता की शिक्षा अब आजकल के काम की तो नहीं है, आजकल हमारे फ्लैट में यज्ञ कहाँ करे, छोटा सा कमरा, जाने का रास्ता नहीं, धुआं कहां से हो जाएगा घर में, और घी कहां से लाए, पंडित रोज यज्ञ कैसे करेंगे? तो क्या भगवान की शिक्षा काम की नहीं है क्या? हाँ, भगवान ने कहा है रोज यज्ञ करो। अब ये रोज यज्ञ हो सकता है? कौन सा वाला? सोहा वाला? हाँ, छोटे वाले फ्लैट कमरे में हो सकता है? डेढ़ कमरे, डेढ़ फ्लैट, डेढ़ रूम वाले फ्लैट में हो सकता है? हमने कल दो चार दिन से कह रहे हैं कि भगवान प्रभुपाद जी ने ये जो वो सामने सामने घर बने हैं ना, ये इनको चिड़िया घर बोला है, चिड़िया के घोंसले फ्लैटों को बोला। ऐसे क्यों बोला है? मैं सोच रहा था, चिड़िया का घोंसला बोला है, न तो धरती पे है न आकाश में, बीच में लटका हुआ, एक पेड़ के ऊपर है, और दूसरा घोंसले में क्या होता है, चिड़िया बेचारी को रोज जाना पड़ता है, दाना लाना पड़ता है तब खाती है, ये बेचारा फ्लैट वाला रोज जाएगा और रोज कमा के आएगा तब खाएगा। ये घोंसले में जगह नहीं है ना 12 महीना का रखने जितनी, ये घोंसला है, घर होता तो 12 महीने का सामान पड़ा होता, 6 महीने नहीं जाए तो भी चिंता नहीं है। पुराने घर तो बड़े होते, देखा है खेतों के अंदर बहुत बड़ा वो रखा हुआ है, गेहूं बाजरी के बड़े बड़े आधे आधे क्या कहते हैं पहाड़ बने हुए हैं, ऊपर भूसा दे के ढक के रखा है। अब कहां इसके अंदर रखो, बड़े रखे दिखाओ, अपने पाव रखने की जगह नहीं है तो अन्न कहां से रखने, तो घोंसला हुआ कि नहीं हुआ। रोज बाहर जाओ, दाना लाओ और खाओ। हरे कृष्णा। तो कौन सा यज्ञ, तब भगवान ने कह दिया आपको मैं 10वें अध्याय तक चलते चलते बताऊंगा कि मेरी विभूति जप नाम का यज्ञ है, रोज तुम ये जप यज्ञ किया करो। तो ये यज्ञ सब कर सकते हैं घोंसले में बैठ के भी नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये यज्ञ जप यज्ञ कहलाता है। और ये यज्ञ भगवान ने कहा है कामधेनु है, तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी करेगा और तुम इसको निरंतर रोज किया करो। और फिर भगवान ने कह दिया ये दुनिया में जो कुछ पैदा होता है ये असल में देवताओं, देवता आपको हवा भी दे रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं, अगर आप वापस उनको याद करके धन्यवाद करके नहीं खाएंगे तो आप चोर हैं, जिसका माल है उसको उसका धन्यवाद भी नहीं करते हैं, कृतज्ञ भी नहीं होते हैं। और फिर कह दिया यज्ञ शिष्टाश्नई संतो मुच्यंती सर्व किल्बश, ये पचंती आत्म कारणात्। क्या है फिर, अघम पापम, अघम और पापम दो शब्द है। जो यज्ञ में अर्पण करके फिर भोजन को करते हैं वो तो सारे पापों से बच जाते हैं। इसका मतलब जो भोजन बना के भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाते हैं वो तो सब पापों से बच जाते हैं, और जो अपने खाने के लिए बनाते हैं वो घिनौना पाप खा रहे हैं। ये पचंती आत्म कारणात्, अपने लिए जो पकाते हैं। अघम पापम, अघम का मतलब पाप और पाप का मतलब भी पाप। किसी ने बोला दो शब्द क्यों लिखे हैं, हमने कहा इसलिए लिखे हैं लोग बड़े होशियार हैं, बोलते हैं हम अपने लिए थोड़ी पकाते हैं, हम तो होटल में खाते हैं, उसके लिए अघम पापम लिखा है। अपने लिए पकाता तो सिर्फ पाप, और होटल में खाता है तो अघम पाप, पाप का बड़ पापियों का भाप। लोग बड़े होशियार निकलेंगे, बोला हम अपने लिए तो पकाते ही नहीं है, हम तो बाहर खाते हैं, तो अघम पाप खाते हो, वो सिर्फ पाप वो अघम पाप। फिर भगवान ने उदाहरण देते हुए कहा कि देखिए ये मुश्किल नहीं है, जनक जैसे राजा जो होते थे ना वो भी अपने कर्तव्य के कर्म को करते हुए दुनिया में राजपाट चलाते हुए भी मेरे लिए राज करते थे, मेरी सेवा में लगे हुए थे। ये जनक राजा का उदाहरण दे दिया। कर्म योगियों में जनक राजा बहुत बड़ा उदाहरण है। भगवान श्री रामचंद्र के ससुर जनक, उसका नाम क्या था, भगवान रामचंद्र के ससुर जनक का नाम क्या था, मैं ये पूछ रहा हूं। मिथिला का राजा मिथिलेश, इसलिए उसको मिथिलेश कहते थे, बहुत अच्छा। लेकिन उसके पास भी जो कोई मिथिला का राजा होगा उसको भी मिथिलेश ही कहेंगे। विदेहराज, जो भी इस कुल में राजा हुआ है उसका नाम है विदेहराज। जनक, विदेहराज, मिथिलेश, ये तीनों उपाधियां हैं उसकी जो मिथिला का राजा बनता है। और ये उपाधियां शुरू हुई है निमि महाराज से, जो इनका पूर्वज है। निमि महाराज का नाम पहले हुआ जनक, फिर हुआ विदेहराज, फिर हुआ मिथिलेश, और उसकी गद्दी पे जो भी बैठा उसके ये तीन नाम हुए। लेकिन उनका अपना पर्सनल नाम कुछ और होता है। सीता माँ के पिताजी का नाम था क्षीरध्वज, जिसके हल्की फाल से सीता निकली थी वो क्षीरध्वज। और उसके भाई के नाम भी दूसरा, वो तो लिखा है रामायण में, क्षीरध्वज के भाई क्षीरध्वज। इसको बहुत बड़ा कर्म योगी कहते हैं। राजा होते हुए भी भगवान के कार्य को संभालते हुए, इतना बड़ा राज संभालते हुए भी सदा भगवान से जुड़ा हुआ था। और राजा का उदाहरण देने के बाद भगवान क्या कहते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठ तद तद एवत्रो जनः। जो श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करेगा सामान्य व्यक्ति उसका अनुकरण करेगा। तो श्रेष्ठ कौन है? घर में पिता श्रेष्ठ है, बच्चों के लिए, स्त्री के लिए पति श्रेष्ठ है, स्कूल में आचार्य श्रेष्ठ है, राज में राजा श्रेष्ठ है। तो ये चारों पिता राजा आचार्य पति, ये चारों प्राकृतिक नेचुरल गुरु हैं अपने आश्रितों के। ये अगर आचरण ठीक करेंगे तो दूसरे को सिखाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप सीख जाएगा। आप देखिए, छोटा बच्चा आपके घर में है और आप अगर रोज आरती करते हैं, घंटी बजाते हैं, तो उस वक्त आके बैठेगा उधर, घंटी बजाएगा, करेगा कि नहीं करेगा? आप प्रणाम करोगे तो वो भी सो जाएगा आगे। तो अनुकरण करेगा, छोटे छोटे का काम है अनुकरण करना। जैसा जैसा आचरण श्रेष्ठ व्यक्ति करेगा सामान्य व्यक्ति उसका अनुकरण करेगा। वो दूसरी बात है कि आजकल हमने श्रेष्ठ की जो श्रेष्ठ को जो चयन करना है वो हमने आज बदल दिया है। आजकल श्रेष्ठ कौन है समाज के लिए, जिसका लोग अनुकरण करते हैं? पिक्चर के हीरो, हीरो कट बाल, तो उसका अनुकरण करते हैं जो जीरो है। पहले श्रेष्ठ किसको मानते थे? साधु संतों को। साधु संतों को श्रेष्ठ मानते थे समाज में और उनका अनुकरण करने का प्रयास करते थे। ये रोज सुबह सवेरे उठते हैं, स्नान करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, हमको भी करना चाहिए। पहले साधु संत समाज में श्रेष्ठ हुआ करते थे। साधुओं को श्रेष्ठ होने वाला समाज चला गया तो फिर वीर पुरुषों को श्रेष्ठ मानते थे। फिर भी घरों के अंदर फोटो पहले आप देखिए, कोई साधु संतों के भगवान के चित्र हुआ करते थे, फिर कोई वीर पुरुषों के चित्र भी थोड़े दिनों के लिए रहे, अब किसके चित्र है घरों में? वो खिलाड़ियों के और अभिनेता अभिनेत्रियों के। तो अब बताइए, आपके बच्चे उनका उनका जो आइडियल है, उनका जो चिन्ह है, वो भी ऐसा है जो बेचारा खुद दुखी है तो कहां से दुख दुखी होगा? ये समस्या हो गई ना। जो भी समाज के अंदर बड़ा आदमी यद्यद आचरति श्रेष्ठ स एवत्रो जनः यत प्रमाणम कुरुते, जो जो वो एक स्टैंडर्ड, जो एक मर्यादा स्थापित करेगा, आने वाली पीढ़ी उसका अनुकरण करेगी। देखो घरों के अंदर बड़े बुजुर्ग देखो मंदिर बना के गए हैं तो अभी लोग उसमें जा रहे हैं ना। तो जो अच्छे काम बड़े कर गए हैं वो कुल परंपराएं चल रही है। तो अर्जुन ने देखा फिर श्रेष्ठ कौन है, आप उदाहरण दीजिए। तो भगवान ने ये श्लोक बोला, श्रेष्ठ तो भगवान ही है। तब भगवान को ये करना पड़ा, न क्या क्या है पहला शब्द, न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रेषु लोकेषु किंचन। आप इसको पढ़ते हैं, पढ़िए, न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम, बोलिए, त्रेषो लोकेशो किंचन, नान्वाप्तम अवाप्तव्यम, वर्त एव च कर्मणि। फिर एक बार पढ़िए, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रेषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तम् अवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि। अब इसका अर्थ क्या हुआ? हे पार्थ, ये भगवान जब अर्जुन से बहुत स्नेह उनके हृदय में अर्जुन के लिए उत्पन्न होता था कि मेरा भाई है, मेरी बुआ प्रथा का लड़का है, मेरा भक्त है, तब पार्थ कहते थे। हे पार्थ, मेरे लिए तीनों लोकों में कुछ भी करने के लिए नहीं है। त्रिशु लोकेशु किंचन कर्तव्यम, कोई कम काम मेरे लिए करने को नहीं है। तीनों लोगों को करने के लिए मुझे कुछ भी नहीं करना चाहिए, जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? न तो मुझे किसी चीज की कमी है कि मैं करूं कि मुझे कुछ चाहिए, और न ही मुझे कुछ प्राप्त करने की इच्छा है। न कमी है न इच्छा है। जो पहला जो शब्द है अनावर्तम, मैं मुझे कुछ किसी चीज की आवश्यकता नहीं, और दूसरा शब्द है अवाप्तव्यम, अनावप्तम आवतम अनाप्त, मेरे पास मुझे कुछ चाहिए ये भी नहीं है, और कुछ मैं चाहता, कुछ मुझे फायदा होगा ये भी मेरी इच्छा नहीं है। इस दुनिया में हम तो फायदे के लिए काम करते हैं ना, और इच्छाओं की पूर्ति के लिए काम करते। भगवान कहते मेरे को ना किसी की चीज की इच्छा है, क्यों? मैं आत्मा राम हूं, आपत काम हूं, मैं अपने आप में परिपूर्ण, मुझे करना कुछ भी नहीं है, फिर भी वर्त एव च कर्मणि, फिर भी मैं काम करता हूं, फिर भी मैं काम करता हूं, जबकि मुझे करने की जरूरत नहीं है, कुछ मेरे को चाहिए नहीं, कुछ लाभ नहीं चाहिए, कोई कमी नहीं है, फिर भी मैं करता हूं। क्यों करते हो? उदाहरण हूं ना, मैं ही आऊंगा और मैं ही नहीं करूंगा तो दूसरा श्लोक इसके बाद कहे बोला जाएगा कि मैं ही अगर उदाहरण न बनूं इस धरती के ऊपर आकर, तो ये लोग तो कहेंगे भगवान ने कुछ नहीं किया तो हम क्यों करें, तो ये दुनिया ही सारी गर्क हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, और संसार के अंदर बिल्कुल वर्ण शंकर पैदा हो जाएंगे। तो मैं जब आता हूं तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं करता हूं। द्वारका में भगवान रोज सुबह उठ के अपने बड़े बुजुर्गों के चरण छूने जाते थे, वसुदेव के, उग्रसेन के, देवकी के, सबके माता पिता बड़े बुजुर्गों के रोज चरण छूने जाते थे, जबकि भगवान तो भगवान ही है द्वारकाधीश, लेकिन फिर भी बड़ों के चरण क्यों छूने जाते थे? ये सिखाने के लिए कि बच्चों को बड़ों का आदर करना चाहिए, अगर मैं नहीं करूंगा तो बच्चे नहीं करेंगे, तो संसार के अंदर मर्यादाएं खत्म हो जाएंगी। तो भगवान ये कर्तव्य करके दिखा के गए। एक पूरा अध्याय है द्वारका खंड में भागवत में भगवान की दिनचर्या, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए इस श्लोक के भावार्थ में प्रभुपाद जी ने पहले दो श्लोक उपनिषद वेदों से उद्धृत करके कहा है कि भगवान किसको कहते हैं, जिसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हरे कृष्णा, भगवान कृष्ण को कहते हैं। तू बच्ची बड़ी होशियार है, बस ये एक बात जब तक तुम इस संसार में रहो पक्की करके रखना, फिर तेरा काम बन जाएगा। हरे कृष्णा। तो दो श्लोक इसका श्वेताश्व उपनिषद से कहे गए हैं। श्वेताश्वर श्वेता श्वेत अश्वतर, उपनिषद के सातवां और आठवां श्लोक भगवान किसको कहते हैं उसके लिए कहे गए हैं शास्त्र में। तम ईश्वराणाम परमम महेश्वरम, वो तो सारे ईश्वरों का महेश्वर है। देवता सब छोटे छोटे ईश्वर हैं, तो भगवान उन सब का महेश्वर है, महाईश्वर है। महेश्वर का मतलब महान ईश्वर, तम देवतानां परमं च देवतम। जितने भी देवता है उन सब में परम देव है, देवा देवानाम वासुदेव, सारे देवों में मैं अच्युत हूँ सारे। तो ये दूसरा लाइन है, भगवान किसको कहते हैं, पतिम पतिनाम परमं प्रस्ताद विदाम देवं भुवनेश्वं वीर्यं न तस्य कार्यं करणं च विद्यते। उसके लिए कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं है। न तत्समस्य चाभ्यधिकस्य दृश्यते परस्य शक्ति विवधैय श्रूयते स्वभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। तो फिर काम कैसे होता है उसका, बोला उसकी जरूरत नहीं, उसकी इतनी शक्तियां हैं जो इस सारे संसार का संचालन चलाती। भगवान की बाहरंग शक्ति इस दुनिया का संचालन चलाती है दुर्गा, और आध्यात्मिक जगत का संचालन चलती है अंतरंग शक्ति चलाती है। तो भगवान को कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसकी शक्तियां सारी काम करती है। जैसे प्राइम मिनिस्टर को कुछ करना नहीं है, सारी गवर्नमेंट अपने आप काम चला रही, गवर्नमेंट काम चला रही है। ऐसे बहुत सारे उसके पास शक्तियां हैं जो काम करती है, भगवान को कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, फिर भी काम करते। तो इसका हिंदी में पढ़ लीजिए अनुवाद, दोनों श्लोकों का अनुवाद कोई पढ़ ले। माइक एक ही है, दूसरा है, जरा जोर से पढ़िए हिम्मत करके, समय हो रहा है।
परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियत है और विभिन्न लोकपालों में सबसे महान है, सभी उनके अधीन है, सारे जीव परमेश्वर के ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है, जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है, वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य है और समस्त संचालकों के भी संचालक है, अतः वे समस्त भौतिक नेताओं तथा नियंताओं के बढ़कर है और सबों द्वारा आराध्य है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है और वे ही समस्त कारणों के कारण है।
दोनों पूरे है दोनों का, दूसरा अभी दूसरा,
उनका शरीर शारीरिक स्वरूप सामान्य जीवों जैसा नहीं होता, उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, वे परम है, उनकी सारी इंद्रिया जीविया है, उनकी कोई भी इंद्रिया अन्य किसी भी इंद्रिया कार्य संपन्न कर सकती है, अतः न तो कोई उससे बढ़कर है न ही उनके तुल्य है, उनकी शक्तियाँ बहुरूपी है, फलत उसके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं।
तो ये दो श्लोक भगवान कैसा है और वो काम कैसे जगत में करते हैं इसका वर्णन पहले बताया, कि इससे क्या बताना चाहते हैं प्रभुपाद, कि जो गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं वो वेदों में वर्णित है, उसी बात को दोबारा आसानी से समझा रहे हैं। तो इसका अर्थ है भगवद गीता वेदों का सार है, सारे वेदों का सार है भगवद गीता, ये बात पहले सिद्ध कर रहे हैं। और फिर कह रहे हैं सब कुछ ही जब भगवान के अधीन है तो फिर भगवान को कुछ करने की जरूरत क्या है, सब कुछ उसी के अधीन है तो फिर उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को कुछ चाहिए तो फिर कुछ काम करना पड़ेगा, लेकिन भगवान को तो कुछ दुनिया में कुछ चाहिए नहीं, तो फिर काय के लिए काम करें। फिर भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ चलाते हुए कुरुक्षेत्र में घोड़े हांक रहे थे, कोई जरूरत है उनको कुछ करने की, दुनिया चलाने के लिए उसको जरूरत कोई कुछ नहीं करना पड़ता है, उनकी शक्तियां दुनिया को चला रही हैं, लेकिन फिर भी इस धरती के ऊपर जब अवतार लेकर आए तो कुरुक्षेत्र में अर्जुन के रथ को चला रहे थे, तभी तो भगवद गीता कही है। अगर रथ ही नहीं चलाते, कुरुक्षेत्र में होते ही नहीं भगवान, द्वारका बैठे होते तो आज हम बैठ के यहां गीता थोड़ी पढ़ते। तो क्यों भगवान कार्य करते, जन कल्याण के लिए, भगवान को कुछ जरूरत नहीं है, कुछ चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी कुरुक्षेत्र में अर्जुन के रथ के घोड़े हांक रहे थे, क्यों, क्योंकि भगवान क्षत्रियों के नेता बन के आए थे और क्षत्रिय को युद्ध भूमि में होना चाहिए। ये तो हुआ क्षत्रिय कर्म करके, जो राजा का कर्म है तो राजा का कर्म करके दिखाया, बेटे का क्या कर्तव्य था वहां बेटा बन के दिखाया, और जहां पति का कर्तव्य था वहां पति बन के दिखाया, जहां मित्र का कर्तव्य था वहां मित्र बन के दिखाया। तो भगवान ने सारे नाते निभाए जबकि उसको किसी चीज करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन हम कहते हैं ये जहां कुरुक्षेत्र प्रभुपाद ने लिखा है उसका तात्पर्य ये है कि भगवान घोड़े हांकने आते ही नहीं तो गीता कहां से आती, और गीता नहीं आती तो आज बैठ के हम यहां गीता का अध्ययन कैसे करते। तो भगवान ने क्यों ये कार्य किया, जन कल्याण के लिए, सामान्य लोगों को सदमार्ग दिखाने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए। भगवान को कुछ काम करने से पाना नहीं है, कुछ चाहिए नहीं, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन एक चीज की भगवान को चिंता है कि ये मेरे जीव बिचारे अनादि काल से इस दुनिया में कर्म के पास में ऐसे बंधे हुए हैं, इनको मुक्त करने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तो दूसरों के हित के लिए, जन कल्याण के लिए, जीवों को वापस अपनी ओर आकर्षण करने के लिए भगवान इस जगत में अवतार लेके और भिन्न लीलाएं करते हैं, जबकि उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्षत्रिय का धर्म है, क्षत्रिय का धर्म है कि जो आदमी बेचारा पीड़ित है, दुखी है, उसकी रक्षा करे। और वैसे तो भगवान को पृथ्वी देवी ने बुलाया था, ब्रह्मा जी के साथ और शंकर जी के साथ गई थी कि धरती ने कहा कि मेरे ऊपर भार बढ़ गया है, आप आके भार उतारिए। तो भगवान पृथ्वी के भार उतारने के लिए आए थे, भक्तों को दर्शन देने के लिए आए थे, और जब भक्तों को दर्शन देने के लिए आए थे तो उनको भक्त भगवान की सेवा करते हैं और भगवान अवसर ढूंढते हैं कि मैं भक्त की सेवा कब करूं। भक्तों और भगवान में कॉम्पिटिशन चलती है एक दूसरे की सेवा करने की। तो भक्त भगवान की सेवा करते हैं और भगवान भक्त के लिए सब व्यवस्था बना के रखते हैं। आप भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान आपकी सेवा के लिए मौका ढूंढेगा, ये भगवान की विशेषता है। वो काम क्यों करते हैं, ताकि हम उसकी ओर आकर्षित हो जाएं, और उनकी ओर आकर्षित होने से हम उनके भक्त बन जाएंगे। तो फिर भगवान अपने भक्तों का रक्षक है, पोषक है, पालक है, और कहता है मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है क्योंकि मैं उसकी रक्षा स्वयं करता हूं। भगवान को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, फिर भी उन्होंने ये सारे कार्य अपने अवतार के समय किए। फिर भी उन्होंने शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। एक बात बस लास्ट कहते हैं, फिर इस कथा को यहां विराम देते हैं। भगवान जब आते हैं अवतार लेकर भी, तब भी शास्त्रों की मर्यादा का पालन करते हैं, उसका उल्लंघन नहीं करते। क्यों नहीं करते, कि अगर मैं शास्त्र नहीं मानूंगा तो लोग भी नहीं मानेंगे, तो शास्त्र मेरे हैं, मैंने दिए, तो अपने बनाए हुए शास्त्र की स्वयं पालन भगवान करता है। जैसे अपने बनाए हुए कानून की गवर्नमेंट में बनाने वाली कानून गवर्नमेंट है, लेकिन लाल बत्ती के ऊपर मंत्री की गाड़ी भी खड़ी होगी कि नहीं होगी, कानून भी उसने बनाया है, फिर भी गाड़ी खड़ी करेगा, नहीं करेगा तो नेम टूट जाएगा, तो सारे तोड़ के चले जाएंगे। तो भगवान ने शास्त्रों के मर्यादा बनाई है तो उसका पालन स्वयं पहले करते हैं, ताकि सब लोग शास्त्रों के बताए हुए मार्ग के ऊपर चले। राम जी भगवान ने जब अपने पिता दशरथ के लिए पिंड दान किया तो दशरथ का हाथ बाहर निकल आया। राम जी रख रहे थे तो पंडित जी ने कहा, महाराज आपके पिता का हाथ निकला है लेकिन सबके बाप का हाथ नहीं निकलेगा। फिर लोग कहेंगे, महाराज मेरे बाप का हाथ निकलेगा तब पिंड रखूंगा, शास्त्र में तो पिंड रखने का नियम है कुश के घास के ऊपर, आप रखिए कुश के घास के ऊपर। और राम जी ने इस शास्त्र की आज्ञा का पालन किया। शास्त्र को भगवान अवतार लेते हैं तब भी शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करते। अब एक आपको भगवान श्री कृष्ण की छोटी लीला सुना के कि शास्त्र का भगवान पालन करते कथा को विराम देते हैं। गोपियों के घर में कृष्ण मक्खन चुरा चोरी करने जाता था, उसका नाम माखन चोर है, लेकिन गोपियों के घरों में जाता था, तुम्हारे घरों में कभी नहीं आया। आया किसी के घर में माखन चुराने? अमूल का माखन चोरी करता भी नहीं है, नमकीन है वो नहीं खाएगा, पुराना फ्रिज का माखन थोड़ी खाता है, मटकी है तो किसी के घर में मटकी है माखन रखने के लिए, अब मटकी नहीं है तो आग कहां से आएगा है? फिर भी यशोदा को गोपियां कहती है तेरा लाला मक्खन चुराता है, कृष्ण कहे तुम पकड़ के लाके दिखाओ। अब गोपियों ने कहा हम एक बार पकड़ के ले जाएंगी, यशोदा को दिखाएंगी। तो गोपियों ने कन्हैया को पकड़ने के लिए क्या किया, पहले अपने घर के चारों दरी खिड़की दरवाजों में घंटियां बांध दी कि कहीं से आएगा अंदर तो घंटी बजेगी, आवाज आएगा तो हम पकड़ लेंगे। फिर उखल में घंटी बांध दी, छीके में घंटी बांध दी, और पनघट पे जाके कृष्ण को कहा कन्हैया इधर आओ, अच्छा मक्खन बनाया हमारे घर खाने आना। वो निमंत्रण दे के आई कन्हैया अपने सखों को लेकर, चलो मधुमंगल चलो श्रीधामा चलो उत्सव कृष्ण चलते हैं मक्खन खाएंगे, गए कह के गई है गोपी। उधर गए तो घंटियां देखी, हे भगवान ने कहा कैसे गोपियां होशियार हो गई हैं, हमको पकड़ना चाहती हैं, घंटियां बांधी है, घंटी बजेगी और ये हमको पकड़ेंगी। भगवान त्रिलोकीनाथ ने ऐसे कहे घंटी नहीं बजना, मेरा आदेश है, ये सूर्य भी मैं इशारा करता हूं तब उगता है, तुम कौन सी घंटी चीज नहीं बजना, अच्छा लो कूदो। सब कूद गए अंदर, घंटी बजी नहीं, उखल उठाया घंटी बजी नहीं, छीके से मक्खन उतारा घंटी बजी नहीं, मक्खन उतारे भक्तों को दिया खाओ 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 घंटी नहीं बजी। तो कोई भक्त ऐसे कर रहे हैं मक्खन खाते हुए, अरे क्या खट्टा है क्या, मैं जरा टेस्ट करता हूं। भगवान ने मक्खन खाने के लिए घंटी जैसे मुंह में उंगली डाली सब घंटियां बजी, भगवान ने बोला तुमको बोला था नहीं बजना, क्यों बज रही है घंटियों ने कहा महाराज भगवान को भोग लगे तब घंटी बजे, ये शास्त्र में लिखा है, अब हम आपकी बात माने कि शास्त्र की बात माने, शास्त्र में लिखा है कि भगवान को भोग लगे तो घंटी बजे, अब आप मक्खन खाएंगे तो हमको तो बजना पड़ेगा नहीं तो शास्त्र का नियम टूट जाएगा। तो भगवान बंद गए लेकिन शास्त्र का नियम घंटियों ने पालन किया और भगवान ने वो स्वीकार किया। गोपी तो भागती आई, भगवान को पकड़ लिया हाथ से पकड़ के जा रही थी यशोदा को दिखाने, सामने बड़ा बुजुर्ग कोई नंद बाबा आया उपनंद, तो उसने घूंघट ले लिया, बड़े को देख के पुराने जमाने में स्त्रियां घूंघट ऐसे निकालती थी, और उस वक्त कृष्ण ने उस गोपी के लड़के का हाथ उसके हाथ में दिया और खुद भाग गया और भाग के घर में चला गया। और ये जाते ही कहती है ये देख नंद रानी तेरा लड़का मक्खन खाता हुआ मुंह में लगा हुआ पकड़ के लाई हूं। नंद रानी हंसती है कि देख किसको लाई है, मेरा लाला तो अंदर बैठा है, और अंदर से कृष्ण उसको ऐसे करता है ई ओ हो, वो देखती है अभी तो पकड़ के लाई है, बोले देख तो मुड़के देखती है तो अपना छोरा है। अरे ये क्या हुआ, बिचारी को लज्जा आई, बाहर निकली, कृष्ण घूम के आया दूसरी तरफ से, बोला इस बार मेरे को पकड़ा है, मैंने तेरे लड़के का हाथ में दिया है, दोबारा कभी पकड़ने का कोशिश किया तो तेरे पति का हाथ पकड़ा दूंगा। तब से गोपियों ने कभी कृष्ण को नहीं पकड़ा, बोला खाओ पियो मौज करो, हरे कृष्ण धन्यवाद। भगवान कुछ करने की जरूरत नहीं है फिर भी करते हैं, और हमको सब कुछ करना चाहिए, इसलिए भगवान ने कहा है मर्यादाओं का और शास्त्र का पालन करो, और गीता में भगवान ने आदेश दिया है मेरे भक्त बनो, और हमको ईमानदारी से भक्त का भगवान का भक्त बनना चाहिए, रोज भगवान का नाम जपना चाहिए, भगवान को भोग लगाकर प्रसाद खाना चाहिए, और भगवान के संदेश भगवद गीता को नित्य नियम से पढ़ना चाहिए। बस इतना काम करो आपका जीवन सफल। हरे कृष्णा, धन्यवाद।
का कोई प्रश्न है?